एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। तो आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जो काफी बेचैन करता है, सोचने पे मजबूर करता है और शायद हमेशा विवादास्पद रहेगा। एंथनी बर्जेस का एक क्लॉकवर्क ऑरेंज।
हाँ, 1962 में आई है किताब, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब ये एक तरह का आईना है ना, समाज और व्यक्ति की जो आजादी है उसके बीच का तनाव दिखाती है।
बिल्कुल। और इसके लेखक एंथनी बर्जेस वो भी कमाल की शख्सियत थे। उपन्यासकार तो थे ही, साथ में संगीतकार, आलोचक, भाषाविद भी।
हाँ, और उनकी कैथोलिक परवरिश का असर दिखता है उनके काम में। वो बार बार पाप, बुराई और सबसे बढ़कर वो चुन्नी की आजादी, मतलब स्वतंत्र इच्छा, उस पर सवाल उठाते हैं।
सही कहा। और उनकी शैली भी एकदम अलग, मतलब बौद्धिक रूप से पैनी, भाषा के साथ खेलने वाली और व्यंग्य से भरी हुई। सोचे वो 1960s का दशक।
हाँ, वो दौर ही ऐसा था, बढ़ती युवा हिंसा,
राज्य की ताकत पर सवाल उठ रहे थे, और वो शीत युद्ध का माहौल जहां व्यक्तिगत आजादी और सामूहिक नियंत्रण के बीच एक अजीब सी खिंचतान चल रही थी।
और इसी माहौल में बर्जेस ने ये डिस्टोपियन कहानी रची जो ऑरवेल के 1984 या हक्सले के ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ खड़ी होती है, पर इसकी अपनी एक अलग जगह है।
शुरुआत में तो मिलीजुली प्रतिक्रिया थी।
हाँ, लेकिन फिर वो स्टैनली कुब्रिक की फिल्म आई 1971 में, उसने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया।
हालांकि फिल्म ने और अमेरिकन एडिशंस ने भी उपन्यास का वो 21वां अध्याय छोड़ दिया था।
हाँ, जो बर्जेस के लिए बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि वही अध्याय कहानी को एक नैतिक ठहराव और उम्मीद देता है।
और आज हमारी इस बातचीत का मकसद भी यही है, इस कहानी की परतों को खोलना, किरदारों के अंदर झांकना और उन बड़े सवालों से जूझना जो बर्जेस उठाते हैं, जैसे क्या अच्छाई थोपी जा सकती है
और चुनने की आजादी की असली कीमत क्या है।
तो चलिए एलेक्स की दुनिया में कदम रखते हैं। कहानी का हीरो, या कहे एंटी हीरो, है एलेक्स, 15 साल का लड़का।
आकर्षक है, तेज दिमाग वाला भी, लेकिन भयानक रूप से हिंसक। एक अंधेरे भविष्य के ब्रिटेन में रहता है।
उसका अड्डा है कोरोवा मिल्क बार, जहां वो अपने दोस्तों के साथ, जिन्हें वो ड्रूग्स कहता है,
हाँ, जॉर्जी, पीट और डिम, उनके साथ वो मोलोको प्लस पीता है, मतलब नशीले पदार्थों वाला दूध, और ये उनकी रात की तैयारी होती है।
तैयारी किस चीज की?
अल्ट्रा वायलेंस की, शब्द ही काफी है।
उनकी रातें लूटपाट, मारपीट, बिना किसी वजह की क्रूरता, इसी से भरी होती हैं।
लेकिन यहां एक दिलचस्प और सच कहूं तो परेशान करने वाला विरोधाभास है। एलेक्स सिर्फ एक वहशी दरिंदा नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपनी हिंसा को एक कला की तरह देखता है,
जैसे वो अराजकता का सौंदर्य शास्त्री हो।
और सबसे अजीब बात,
हाँ, उसका शास्त्रीय संगीत से प्यार, खासकर बीथोवेन की 9वीं सिम्फनी। अक्सर यही महान संगीत उसकी क्रूर हरकतों का साउंडट्रैक बनता है।
कैसा घालमेल है ये सौंदर्य और वहशीपन का।
यही उसे इतना यादगार और हाँ, विचलित करने वाला पात्र बनाता है।
पर हर शिकारी का दिन आता है, कहते हैं ना, कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उसके अपने ही साथी उसे धोखा देते हैं।
हाँ, एक रात एक घर में घुसपैठ करते हैं वो लोग। एलेक्स एक अमीर महिला की हत्या कर देता है
और भागते समय उसके ड्रूग्स ही उसे घायल करके पुलिस के हवाले कर देते हैं।
और यहीं से शिकारी एलेक्स का पतन शुरू होता है, लंबी जेल की सजा।
बिल्कुल।
और जेल में ही कहानी अपने असली दार्शनिक मुद्दे पर पहुंचती है।
हाँ, वो लुडोविको तकनीक। एलेक्स को एक मौका दिया जाता है एक प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक तकनीक से गुजरने का।
ये राज्य का तरीका है अपराध मिटाने का, एक क्रांतिलहरी तरीका, अपराधियों के मन में हिंसा के प्रति घृणा पैदा कर देना, मतलब वो शारीरिक रूप से बुरा काम कर ही ना सकें।
तो यहाँ बर्जेस हमें सीधे चुनौती देते हैं, क्या हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जो सुरक्षित तो हो पर जहां अच्छाई सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन हो, चुनाव न हो।
एलेक्स तो इसे जीएन से जल्दी निकलने का शॉर्टकट समझता है, उसे लगता है वो सिस्टम को धोखा दे देगा।
पर असल में यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जो उपन्यास के शीर्षक में है, एक क्लॉकवर्क ऑरेंज,
मतलब एक ऐसी चीज जो बाहर से तो प्राकृतिक लगे जैसे संतरा ऑरेंज,
पर अंदर से मशीन क्लॉकवर्क की तरह कंट्रोल हो। क्या ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से अच्छा या बुरा चुनी नहीं सकता, वो वाकई इंसान है?
बड़ा गहरा सवाल है।
और ये सवाल किरदारों के जरिए और भी उभरता है। एलेक्स का सफर ही देखिए, कैसे बदलता है वो।
बिल्कुल, पहले हिस्से में वो शिकारी है, ताकत, नियंत्रण, हिंसा का नशा, अपनी वो खास नादिसत स्लैंग बोलता हुआ।
हाँ, वो भाषा भी गजब की है।
लेकिन फिर आती है लुडविको तकनीक, वो उसे तोड़ देती है। हिंसा का ख्याल आते ही या बीथोविन का संगीत सुनते ही उसे उल्टियां होने लगती हैं, भयानक दर्द।
तो शिकारी से वो एक लाचार मोहरा बन जाता है जिसे समाज में वापस फेंक दिया जाता है।
सही।
और यहीं पर बर्जेस उस 21वीं अध्याय की जरूरत पर जोर देते हैं। उनका मानना था कि असली बदलाव इस तकनीक से नहीं आता।
नहीं,
असली बदलाव तब आता है जब एलेक्स सब कुछ झेलने के बाद उम्र के साथ खुद ये महसूस करता है कि हिंसा अब उसे रोमांचित नहीं करती।
वो परिपक्व होता है।
हाँ, और खुद अपराध की दुनिया छोड़ने का फैसला करता है। ये चुनाव जो थोपा हुआ नहीं है, कमाया हुआ है, वही असली मानवीय जीत है बोजेस के हिसाब से।
इस पूरी कहानी में एक और आवाज है जो लगातार इस चुनाव के हक में बोलती है। वो है जेल का पादरी, जिसे एलेक्स चार्ली कहता है।
हाँ, पादरी।
वो इस उपन्यास का नैतिक कंपास है एक तरह से। वो एलेक्स के गुनाहों से डरता है, जाहिर है, लेकिन राज्य जिस तरह एलेक्स को ठीक कर रहा है उससे वो और भी ज्यादा डरता है।
उसका तर्क सीधा है ना, कि चुनने की आजादी ही इंसान को इंसान बनाती है। बिल्कुल, अगर राज्य किसी से ये हक छीन लेता है तो वो उसकी आत्मा को नष्ट कर रहा है। और ये शायद एलेक्स के अपराधों से भी बड़ा पाप है। उसके वो लाइन है ना, जब कोई व्यक्ति चुन नहीं सकता तो वो मनुष्य नहीं रह जाता। यही इस किताब का सार है।
और फिर है एफ एलेक्जेंडर, एक लेखक।
हाँ, कहानी की शुरुआत में वो एलेक्स और उसके ड्रूक्स का शिकार बनता है।
वो उसे पीटते हैं, उसकी पत्नी के साथ भरभरता करते हैं और बाद में उसकी पत्नी मर जाती है।
और किस्मत का खेल देखिए।
हाँ, सालों बाद जब एलेक्स लुडोविको तकनीक के बाद लाचार बेसहारा भटक रहा होता है तो पनाह लेने के लिए वो अनजाने में एफ एलेक्जेंडर के दरवाजे पर ही पहुंच जाता है।
कमाल के विडंबना है ये। शुरुआत में अलेक्जेंडर उसे पहचानता नहीं, उसे राज्य का सताया हुआ समझकर मदद करता है।
लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, उसकी दया बदले की आग में बदल जाती है।
हीद बनाया जाए।
ये दिखाता है कि कैसे ऊंचे आदर्शों की बात करने वाले भी उतने ही निर्मम हो सकते हैं। बदला लेने की इच्छा इंसान को कैसे बदल देती है।
और इस सब के पीछे है राज्य की वो मशीनरी, डॉक्टर ब्रोदास्की जैसे ठंडे दिमाग वाले वैज्ञानिक
जो लुडोविको तकनीक बनाते हैं,
और आंतरिक मंत्री जैसे नेता जो इसे लागू करते हैं। ये लोग आधुनिक राज्य के उस चेहरे को दिखाते हैं जिसे सिर्फ नतीजों से मतलब है, इंसानियत से नहीं।
उनके लिए एलेक्स को इंसान नहीं, बस एक प्रयोग है, एक आंकड़ा।
उनका लक्ष्य है समाज से अपराध खत्म करना, चाहे उसकी कीमत व्यक्ति की आत्मा ही क्यों न हो।
और ये एक चेतावनी है कि कैसे पूरी तरह सुरक्षित समाज बनाने की चाहत में हम उसी मानवता को कुचल सकते हैं जिसकी रक्षा का हम दावा करते हैं।
तो ये सब कहानी के तीन हिस्सों में सामने आता है ना। बर्जेस ने इसे संगीत की तरह तीन भागों में बांटा है। हर भाग में 7 अध्याय, कुल 21। हाँ, और 21 पारंपरिक रूप से बालिग होने की उम्र भी मानी जाती है। तो पहला भाग अध्याय 1 से 7 एलेक्स की अल्ट्रा वायलेंस का दौर है।
कोरोवा मिल्क बार से शुरू होकर राहगीरों पर हमले, विरोधी गैंग से लड़ाई, एफ एलेक्जेंडर के घर पर वो भयानक रात।
हाँ, जहाँ एलेक्स सिंगिंग इन द रेन गाते हुए क्रूरता करता है।
इसी भाग में गैंग के अंदर तनाव बढ़ता है और अंत में साथियों के धोखे और गिरफ्तारी के साथ शिकारी एलेक्स का अंत होता है।
यहाँ उसकी क्रूरता सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि एक तरह का विद्रोह भी है।
जी जी,
स्थापित व्यवस्था के खिलाफ, जो बीथोविन के संगीत के साथ मिलकर और भी जटिल हो जाता है।
फिर आता है दूसरा भाग, अध्याय 8 से 14, जो उसे क्लॉकवर्क मैन बनते दिखाता है।
14 साल की सजा, जेल की कठोर जिंदगी, और फिर वो लुडोविको तकनीक।
उसे कुर्सी से बांधकर, आंखें खुली रखकर भयानक हिंसा की फिल्में दिखाई जाती हैं।
हाँ, और साथ में उबकाई लाने वाली दवा दी जाती है और बैकग्राउंड में बजता है शास्त्रीय संगीत, बीथोविन भी। घृणा पैदा हो जाती है। वो ठीक हो गया है एक चलता फिरता ऑटोमेटन।
लेकिन क्या ये वाकई ठीक होना है?
यहीं से तीसरा भाग शुरू होता है, अध्याय 15 से 21, जहां पासा पलट जाता है। समाज में वापस आया सुधरा हुआ एलेक्स पूरी तरह बेबस है।
उसके माँ बाप उसे नहीं चाहते, वो अब शिकार है। उसे वही बूढ़ा पीटता है जिसे उसने कभी सताया था।
और फिर उसके पुराने साथी डिम और बिली बॉय, जो अब पुलिस वाले बन गए हैं, वो उसे बुरी तरह पीट कर मरने के लिए छोड़ देते हैं।
घायल एलेक्स पनाह मांगते हुए एफ एलेक्जेंडर के घर पहुंचता है, और जब एलेक्जेंडर को सच्चाई पता चलती है
तो वो और उसके साथी एलेक्स को सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उसे एक कमरे में बंद करके तेज आवाज में बीथोवन की 9वीं सिम्फनी बजाते हैं।
कंडीशनिंग की वजह से होने वाला दर्द इतना असहनीय होता है कि एलेक्स खिड़की से कूदकर जान देने की कोशिश करता है।
वो बच जाता है, लेकिन गिरने और उसके बाद सरकार द्वारा अपना राजनीतिक नुकसान बचाने के लिए करवाए गए इलाज से लुडोविको कंडीशनिंग का असर खत्म हो जाता है।
उसकी बुराई चुनने की क्षमता वापस आ जाती है।
हाँ, और अमेरिकी संस्करण और फिल्म यहीं खत्म होते हैं एक ठंडी निराशाजनक तस्वीर के साथ कि राज्य का प्रयोग बेकार गया।
मगर बर्जेस हमें यहाँ नहीं छोड़ते, उनका वो 21वां अध्याय कहानी को उम्मीद की ओर ले जाता है।
एलेक्स फिर से आजाद है, हिंसक भी है, लेकिन अब उसमें कुछ बदल गया है। हिंसा का वो रोमांच वो फीका पड़ गया है।
हाँ, और एक दिन वो अपने पुराने दोस्त पीट को देखता है जो अब शादीशुदा है, सामान्य जिंदगी जी रहा है।
और ये मुलाकात एलेक्स के अंदर कुछ जगाती है। वो अब 18 का हो चुका है, वो सोचता है शायद अब इस सबसे आगे बढ़ने का वक्त है, शायद एक पत्नी एक बच्चा।
और ये बदलाव किसी कंडीशनिंग से नहीं आया, ये अंदर से आया है, उम्र और अनुभव से। उसने बदलने का चुनाव किया है।
बिल्कुल, ये शांत स्वाभाविक बदलाव ही उपन्यास का असली नैतिक निष्कर्ष है, जो पादरी के विश्वास की पुष्टि करता है कि सच्ची अच्छाई और परिपक्वता केवल स्वतंत्र इच्छा से ही संभव है।
तो इस पूरी उथल पुथल भरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? कौन से बड़े विचार हैं जो बर्जेस हमारे सामने रखते हैं?
सबसे बड़ा सवाल तो वही है, स्वतंत्र इच्छा बनाम राज्य का नियंत्रण। बर्जेस साफ कहते हैं कि चुनने की आज़ादी के बिना इंसान मशीन है। क्या समाज को ये हक है कि वो किसी की आत्मा की कीमत पर सुरक्षा खरीदे?
सही है, ये अधिनायकवादी सोच के खिलाफ एक जोरदार चेतावनी है। और अच्छाई का मतलब क्या है? क्या सिर्फ अच्छा व्यवहार करना काफी है?
या सच्ची अच्छाई वो है जो बुराई के आकर्षण के बावजूद चुनी जाए। एलेक्स का अंत में खुद बदलना राज्य के जबरदस्ती इलाज से कहीं ज्यादा मायने रखता है।
उपन्यास सजा और सुधार के तरीकों पर भी सवाल उठाता है। राज्य के तरीके भी उतने ही क्रूर नजर आते हैं जितने एलेक्स के अपराध।
हाँ, और एस एलेक्जेंडर का बदला लेने का तरीका भी उतना ही अमानवीय है। जैसे समाज अक्सर उसी बुराई का अक्स बन जाता है जिससे वो लड़ रहा होता है।
कला और नैतिकता का रिश्ता भी, वो भी पेचीदा है। एलेक्स का बीथोवन प्रेम दिखाता है कि सौंदर्य और कला अपने आप में नैतिक नहीं होते।
वी महान भी बना सकते हैं और गहरी बुराई के साथ भी रह सकते हैं। जब लुडोविको तकनीक एलेक्स से उसका संगीत प्रेम छीन लेती है तो ये उसकी आत्मा पर एक हमले जैसा लगता है।
और हाँ, वो 21वां अध्याय वो हमें युवावस्था, परिपक्वता और जीवन के चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर करता है
कि एलेक्स की हिंसा शायद सिर्फ शैतानी नहीं बल्कि भटकी हुई जवानी की ऊर्जा है जिसे वक्त के साथ पार पाना होता है।
बर्जेस की लिखने की शैली भी इस उपन्यास को खास बनाती है। पूरी कहानी एलेक्स की जुबानी है, प्रथम पुरुष में।
ये हमें एक अपराधी के मन के अंदर ले जाता है, एक असहज नजदीकी बनाने पर मजबूर करता है। हम उसकी तेजी और अजीब से आकर्षण से खिंचते हैं भले ही उसके काम हमें घिनौने लगे।
और फिर है नादसत, वो खास भाषा जो एलेक्स और उसके दोस्त बोलते हैं, रूसी अंग्रेजी स्लैंग और पुराने शब्दों का एक अजीब मिश्रण।
वो भाषा पाठक को उनकी दुनिया में खींच लेती है, हिंसा को एक अजीब सी दूरी और काव्यात्मकता देती है, ये एलेक्स की आवाज को अनूठा बनाती है।
इसमें प्रतीक भी गहरे हैं। मिल्क प्लस मासूमियत के बिगड़ने का प्रतीक, बीथोवेन का संगीत कला की ऊंची उड़ान का,
और शीर्षक अ क्लॉकवर्क ऑरेंज तो है ही एक जीती जागती चीज नारंगी जिसे मशीन क्लॉकवर्क में बदल दिया गया हो, जो एलेक्स की हालत का सटीक वर्णन है।
उपन्यास की संरचना भी सोची समझी है, तीन भाग, हर भाग में 7 अध्याय, कुल 21।
हाँ, संख्या 21 का परिपक्वता की उम्र से जुड़ना एलेक्स के अंतिम स्वाभाविक विकास वाले विषय को और पुख्ता करता है।
इसे पढ़ना या सुनना एक गहरा झकझोरने वाला अनुभव है। ये डराएगा, गुस्सा दिलाएगा, शायद घिन भी आएगी।
हाँ, लेकिन ये आपको सहज जवाबों से दूर मुश्किल नैतिक सवालों के बीच लाकर खड़ा कर देगा। आप एलेक्स से नफरत करेंगे, फिर शायद उस पर तरस खाएंगे,
और फिर राज्य के तरीकों पर बेचैन होंगे।
बिल्कुल,
ये आपकी सोच को चुनौती दे देता है।
बिल्कुल, इसका स्थायी प्रभाव हिंसा का महिमा मंडन नहीं बल्कि ये सवाल उठाना है कि हम बुराई से कैसे निपटते हैं, सामाजिक व्यवस्था की क्या कीमत चुकाने को हम तैयार हैं,
क्या सुरक्षा के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मा की बलि दी जा सकती है। ये हमें आसान जवाबों के आराम से बाहर निकालकर स्वतंत्रता के सही मायने पर सोचने को मजबूर करता है।
यह कहानी हमारे नैतिक विवेक के लिए एक स्थायी और आवश्यक उत्तेजक है।
यह हमें सिखाती है कि सच्ची मानवीयता और नैतिक विकास केवल स्वतंत्र चुनाव से ही संभव है, न कि बाहरी दबाव या यांत्रिक कंडीशनिंग से।
शायद सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब हम व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्ति की आत्मा का सौदा करने को तैयार हो जाते हैं।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।